नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम छुलो आसमान में आपसे रूबरू होंगी तारा देशपांडे कलिनरी स्टूडियो की प्रमोटर, फिल्म, टेलीविजन, स्टेज एक्ट्रेस श्रीमती तारा देशपांडे। इनसे बातचीत करेंगे नजारा टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन, आईबीजी के प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मित्तर सिंह।
हमारे साथ आज हैं तारा देशपांडे जी, प्रमोटर ऑफ तारा देशपांडे कलिनरी स्टूडियो। ये फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, टेलीविजन, स्टेज और वीजे भी कर रहे हैं। वेलकम तारा।
थैंक यू।
आपके अर्ली डेज के बारे में बताइए, स्कूल, कॉलेज, क्यों आप तो पूरे दुनिया में घूमे हुए हैं।
लेकिन दिल मेरा हमेशा मुंबई में ही होता है। मैं यहाँ पली बड़ी हूँ। मैं कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, वहाँ पर मैंने अपना बीए किया था पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद स्टेज, थिएटर, फिल्मों में काम शुरू कर दिया था।
तो ये तो आपके स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुई, आप पहुंचे कैसे टेलीविजन में? सबसे पहले क्या फिल्म में गए, क्या टेलीविजन?
नहीं, एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तो उस साल, आई थिंक या उससे एक साल पहले, जी टीवी का जन्म हुआ था। तो उस वक्त वो रिक्रूटिंग एजेंट आते थे हमारे कैंपस में कि आप आइए, कुछ ट्राई कीजिए, ऐसा कीजिए, और उस वक्त मैं स्टेज पे काम करती थी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था, परफॉर्म कर सकती हूँ। तो मैंने कहा फॉर फन जाके इंटरव्यू दे देते हैं। तो मैं गई वहाँ पे, लंबी लंबी लाइनें थी, मुझे याद भी है, और कई लोग ऐसे बैठे थे, और फिर आप जाके अपना नाम लिखते थे, फिर आपको अंदर ले जाके वो वीडियो कैम रहता था ना, उस पे आपकी शॉट ले लेते थे, और आपसे हिंदी में बात करवाते थे, इंग्लिश में बात करवाते थे, मराठी में, आपको अच्छा? और कोई भाषा आती है क्या? मैंने बोला बस मुझे इतना ही आता है, लेकिन फ्रेंच में अगर आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं। तो मैंने ऐसे इंटरव्यू दिए, कास्टिंग कॉल जिसे कहते हैं, और फिर मुझे बुलाया एक क्विज शो करने के लिए, कब क्यों कहाँ, और उसमें टीम्स होते थे बच्चों के, और दो एंकर थे, उसमें से मैं एक थी। और उस वक्त ऑफकोर्स गूगल नहीं था, सेलफोन नहीं थे, इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं मिलता था। तीन कैटेगरीज होते थे, कब कैटेगरी, क्यों और कहाँ कैटेगरी, और उसके हिसाब से हम सवाल पूछते थे, फिर कुछ गेम्स होते थे, और बच्चों की उम्र आई थिंक लगभग 10 से लेके आई थिंक 15 साल की थी, तो बहुत कॉम्पिटिशन होता था। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल शो। फिर कहीं और शोज हो गए, फिर उसके बाद फिल्म के ऑफर आए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ट्राई करते, तो किया।
कौन सी फर्स्ट फिल्म थी?
एक्चुअली उस वक्त प्लस चैनल 3-4 फिल्में बना रही थी।
अच्छा।
और सुधीर मिश्रा जी एक डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, और उन्होंने मेरे हाथ में पूरी स्क्रिप्ट थमा दी। तो तब तक तो मैंने सुना था कि स्क्रिप्ट तो होता नहीं है, आपको डेली एक पेज मिलेगा। तो मैंने कहा यहाँ तो पूरी स्क्रिप्ट मिल रही है, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। मतलब ओरिजिनली उस फिल्म का नाम निशाचर रखा था, आई थिंक फिर बाद में उसका नाम बदल दिया। उसमें उस वक्त निर्मल पांडे थे, हु हैड जस्ट डन अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ फूलन देवी, एंड आशीष विद्यार्थी भी थे उसमें, एंड वो एक रात की कहानी थी। एक एड एग्जीक्यूटिव होता है, और पता नहीं कैसे वो किसी डॉन को बहुत गुस्सा दिला देता है, और वो डॉन उसके पीछे पड़ जाता है।
ओके।
दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। तो रात को 7 बजे शूटिंग शुरू होती थी, और 7 बजे सुबह खत्म होती थी।
क्यों? क्योंकि रात की
रात की फिल्म थी। तो मुझे याद है 3-4 महीने तो पूरी रात मैं बाहर रहती थी, और फिर दिन में मुझे नींद आती थी क्लास में, कॉलेज में, लेकिन किसी भी तरह मैंने एग्जाम्स खत्म कर लिए।
हम रहे चुप, तुम रहो चुप, हम रहे खामोशी को, खामोशी से जिंदगी को, जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो चुप, हम रहे चुप, तुम रहो चुप, हम रहे खामोशी को, खामोशी से जिंदगी को, जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो चुप, हम रहे चुप, तुम रहो।
Oh,
बाहों में छुप कर सांसों से जैसे डोले रात उंगलियों को उंगलियों से मौसमों को शौकियों से बात करने दो तुम रहो चुप हम रहे
चुप तुम रहो
होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत
धरती से
तुम रहो चुप हम रहे
चुप तुम रहो चुप हम रहे
चुप तुम रहो।
आपका कुछ बुक्स भी लिखती हैं, हमने सुना है कि कोई तीन चार बुक्स आपने ये करी हैं, पब्लिश करी हैं, फूड के बारे में?
नहीं, पहली किताब मेरी 1999 में छपी थी, वो एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थी जो हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश की थी।
अच्छा।
उसका नाम था 50 and Done। मेरे पिताजी उस वक्त गुजर गए थे, उनकी उम्र उस वक्त 49 थी, उनके सॉर्ट ऑफ मेमोरी में मैंने ये किताब लिखी थी। और उसके बाद तीन और किताबें मैंने अभी पब्लिश की हैं और वो फूड बेस्ड हैं। तो एक किताब जो थी वो कोंकण की कलिनरी हिस्ट्री के बारे में थी, लोग यहाँ क्या खाते हैं, परिवार के जो रेसिपीज होते हैं। इंडिया में जो भी हम पकाते हैं उसमें ट्रेडिशन बहुत होता है, हर फैमिली में अलग होता है, हर कम्युनिटी में अलग होता है, तो क्यों ऐसे होता है। तो वो सिर्फ रेसिपीज की किताब नहीं थी, वो एक इतिहास भी थी उसमें कि इन्वेडर्स आए थे, कॉलोनीज उन्होंने कॉलोनाइजर्स आए थे, तो जब वास्को डी गामा आया था तो कितना बदल गया था, अपने साथ वो टमाटर लेके आए थे, मिर्ची लेके आए थे।
अच्छा।
उससे पहले तो हमारे डाइट में था नहीं, तो कैसे हिंदुस्तान बदल गया। क्योंकि जब आप कोई रेसिपी आज बनाते हो आप तो बस किचन में तड़का वड़का डाल के आप बना देते हो, लेकिन उसकी स्टोरी क्या है, क्यों ऐसा है ये, उसमें क्या क्या है, सॉर्ट ऑफ लाइक अ फूड डिटेक्टिव। तो अगर आप कोई भी रेसिपी लोगे और उसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें आपको पूरी इंडिया की हिस्ट्री दिखेगी। तो आप एक साधारण रेसिपी लोगे, जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र लोग वरण खाते हैं, तो जब आप इस रेसिपी को एनालाइज करोगे, इसमें तुअर दाल है, इसमें जीरा है, इसमें हींग है, हल्दी है, ये सब नेटिव टू इंडिया है। ये रेसिपी बहुत पुरानी है, वास्को से आने से पहले की रेसिपी है। तो हर कंपोनेंट को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो समझ में आता है कि ये कम्युनिटी कहाँ पे थी, उस वक्त उनकी हिस्ट्री में क्या हो रहा था, उनको खाने को क्या मिलता था, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उस वक्त कोई जंग चल रहा था। तो ये सब आपको एक ऑर्डिनरी रेसिपी से पता चलता है।
ये भी सब हार्पर कॉलिंस से करे थे या अलग अलग पब्लिशर?
नहीं, अलग अलग। वेस्टलैंड एक पब्लिशर था, अभी पेंगुइन ने एक किताब पब्लिश की है, फिर हार्पर ने और एक दूसरी भी किताब पब्लिश की थी। थोड़ा कुछ लिख लेते हैं।
तो अभी ज्यादा बुकशॉप्स में आपकी किताबें जाती हैं या ऑनलाइन?
अमेज़न, फ्लिपकार्ट? लेकिन फ्लिपकार्ट और amazon.in पे ज्यादा बिकती है
अभी तो। 80% जो है बुक्स जो है वो ऑनलाइन। मैं भी ऑथर हूँ, इसके थोड़ा बहुत जानता हूँ।
तो पता ही है,
थोड़ा बहुत जानता हूँ।
कितना बदल गया है ना
टोटली।
जब 50 and Done निकली थी 1999 में तो सब बुकशॉप की लिस्ट मिलती थी हमें, और हर बुकशॉप में कहीं ना कहीं हमको जाके लोगों से मिलना पड़ता था, साइनिंग करनी पड़ती थी। अभी तो बुकशॉप्स भी इतने कम हो गए हैं। अभी वो हमारी मुंबई में जो प्यारी सी स्ट्रैंड की बुकशॉप थी,
बेचारी बंद हो गई।
बंद हो गई, इतना दुख हुआ मुझे। तो जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है अलग अलग चीजें बदलती हैं, कुछ चीजों को हमको बचा के रखनी चाहिए। आपको नहीं लगता?
नहीं, मुझे तो जरूर लगता है कि ना बुकशॉप इज मोस्ट एसेंशियल टू गो इन अ बुकशॉप और वहाँ जाके ब्राउज करो, उससे बेटर कोई ना फीलिंग नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मेरी लेटेस्ट बुक जो है अभी पब्लिश हुई है या हो रही है वो मैं सिर्फ ऑनलाइन कर रहा हूँ।
क्यों? मार्केट डिमांड ना,
मार्केट डिमांड प्लस ये जो बुक है थोड़ी अलग है, ये बुकशॉप्स वाले समझ नहीं पा रहे।
हाँ।
बोल रहे हैं ये कैसे बिकेगी, मतलब तुमको बेच के दिखाता हूँ ऑनलाइन।
हाँ।
फिर आ जाना जब बेच लेंगे आपके साथ। फेसबुक पे बुक लिखी है ऑन फेसबुक और फेसबुक ने लॉन्च करा है उनके ऑफिस में बॉम्बे में।
अरे वाह, तो उसकी स्टोरी क्या है?
मैं 5 साल से रोज फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ।
हाँ।
अपने बारे में नहीं।
हाँ।
मैं यहाँ बैठा हूँ और ये खा रहा हूँ, ये सब नहीं, ये दुनिया में क्या हो रहा है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल, उसमें क्या हो रहा है इतिहास में, उसके बारे में लिखता हूँ रोज एक समथिंग। अभी इंटरनेशनल है, अभी कल बोल रहे थे कि प्लूटो प्लैनेट ही नहीं है, तो उसके बारे में लिखा है। 4 साल के पोस्ट निकाल के उसमें से 100 सेलेक्ट करके मैंने बुक बनाई है।
लवली,
सो इट्स अ बुक अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एंड आउटसाइड अर्थ।
क्लेवर आइडिया।
सो आई मेड अ बुक एंड इन दैट आई विश आई हैड गॉट, आई विल सेंड यू अ कॉपी,
प्लीज डू।
उसमें मतलब है ना, द पोस्ट है उसके नीचे, सपोज 4 साल पुराना पोस्ट है तो उसके नीचे ये है कि हाउ व्हाट इज इट टुडे, वो पोस्ट का तो अपडेट है उसमें, और उसके साथ में अदर सेकेंड पेज पे उसकी पिक्चर है। अगर एयर इंडिया के बारे में लिखा था तो एयर इंडिया का एक प्लेन का पिक्चर है।
सो
ऐसी बुक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट अस सी, आई विल सेंड यू वन।
थैंक यू सो मच।
मंजिले न रास्ता।
सुनो जरा हवाओं में ये कैसी है सदा, कोई तो है जो है ये कह रहा कि राह में वो मोड़ आ गया, कि जिसके आगे है जमीन आसमान, न मंजिले न रास्ता।
ना मंजिले ना रास्ता।
इन बिटवीन आप इंडिया छोड़ के यूएसए चले गए, क्यों?
शादी कर ली थी।
अच्छा,
मेरे हस्बैंड अमेरिकन हैं।
अमेरिकन है।
और वहाँ वो उनको बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल गया था बोस्टन में। शादी करके मैं वहाँ रहने चली गई। एक्चुअली कुकिंग का ये सिलसिला वहीं पे स्टार्ट हुआ था।
अच्छा।
क्योंकि वहाँ पे तो बॉलीवुड थी नहीं, क्या करेंगे ना, दिन भर हस्बैंड स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुबह 7:30 बजे जाते हैं।
ऑनलाइन भी नहीं था, दिखता भी नहीं था,
कुछ भी नहीं था,
नेट पे चले जाओ और देख लो।
तो उस वक्त कोई आस पास में एक इंडियन कुकिंग टीचर के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी थी।
अच्छा।
तो मैंने सोचा कुछ दाल चावल तो हम बना लेते हैं ना, इस बहाने किसी से मिल तो लेंगे, दोस्ती वोस्ती हो जाएगी, घर से बाहर निकलेंगे। तो मैं वहाँ चल पड़ी और मुझे लगता है उन्होंने मुझे देखा और सोचो हाँ ये इंडियन है, इससे तो कुछ तो आता होगा। तो मुझे काम दे दिया और वहाँ से शुरू हुआ मेरा सिलसिला सीखने का। क्योंकि अमेरिकन्स जो होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ के लिए उनके पास 10 सवाल होते हैं।
okay.
आप प्याज इतना क्यों पकाते हो, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। और ऐसे सवालों के जवाब मेरे पास तो थे नहीं, क्योंकि हम तो बस बना लेते हैं ना घर पे।
कुछ भी बोल सकते थे ना, उनको तो पता ही नहीं है वैसे भी।
नहीं, तो मैंने सोचा पहले मैं सीख लूं फिर किसी को सिखाऊं। तो फिर कलिनरी स्कूल वगैरह की और उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया।
हमको हर इंसान जिसको हम इंटरव्यू करते हैं उनका बिजनेस इंटरेस्ट हमको निकालना बहुत जरूरी है। तो आई अंडरस्टैंड कि आपने वहाँ पे कलिनरी स्टूडियो शुरू करा, एक बिजनेस शुरू करा।
हाँ, क्या था? मैं एक केटरिंग कंपनी रन करती थी पहले। छोटे छोटे इवेंट्स करते थे हम, 25-50 लोग। फिर जैसे बढ़ता गया, हमारी सबसे बड़ी इवेंट 3,500 लोगों के लिए थी। हम पूरे कॉन्फ्रेंस देखते थे, 3-4 दिन के कॉन्फ्रेंस में सब फूड सप्लाई करते थे। दैट बिकेम अ बिग ऑपरेशन। और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड को यहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गया कुछ काम करने के लिए इंडिया यूएस कॉरिडोर में, तो मुझे लगा बहुत अच्छा है, मैं घर भी चली जाऊंगी, मम्मी और बहन के पास मतलब रह सकूंगी।
तो आते जाते रहते थे या शिफ्ट हो गए?
नहीं, आते जाते रहते थे बहुत। अभी यहाँ पे ज्यादा टाइम गुजारते हैं, 6-7 महीने यहाँ पे रहती हूँ मैं। तो फिर वो बिजनेस मैंने बेच दिया, क्योंकि उसमें माइक्रो मैनेजमेंट बहुत होता है ना। आपके सब बड़े क्लाइंट कहते हैं कि आपका होना जरूरी है, आप आइए प्लीज। तो फिर यहाँ अभी मैं कलिनरी स्टूडियो स्टार्ट कर रही हूँ।
वो क्या होता है?
वो यहाँ पे फूड रिलेटेड सब चीजें होंगी। अभी जैसे कि मुझे ना एंटीक कुक बुक्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो मेरे पास ऐसे कुक बुक्स हैं जो 200 साल पुराने भी हैं। तो उन पर डिस्कशन करना, कुकिंग क्लास करना, फूड फोटोग्राफी के क्लास। आपको पता है कि आज इंस्टाग्राम में सबसे बड़े ब्लॉगर्स वो होते हैं जो फूड के फोटोज डालते हैं। तो कैसे अच्छे फोटोज लें, कैसे एक कहानी बताएं उनमें, तो उनके क्लासेस, बुक लॉन्चेस वगैरह, जो भी मतलब फूड इज अ सेंटर, फूड रिलेटेड।
तो लोग क्या मतलब वो सीखने आते हैं?
सीखने आते हैं, सिखाने भी आते हैं। अगर किसी की नई किताब निकली है तो हम उन्हें बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, फिर वो टॉक देते हैं। कई बार हमारे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि आप हमको ओरिजिन स्टडी करके दो। अभी ओरिजिन स्टडी का मतलब होता है कि मानो कोई कंपनी एक प्रोडक्ट को पेटेंट कर रही है, जैसे कि किसी पेड़ का फूल है, वो जानना चाहते हैं कि और किसी का हक बनता है क्या उसके ऊपर। तो इतिहास बहुत जरूरी हो जाता है, तो उस पर मैं रिसर्च करती हूँ। कोई आके कहता है कि ये रेसिपी आप हमको टेस्ट करके दीजिए कमर्शियल लेवल पे, इसमें क्या डालना है, ये बिकेगा क्या। लोग आते हैं कहते हैं कि हमारा वेबसाइट जो है हम इस पर ये फूड बेचना चाहते हैं, आप हमको इसका डिज़ाइन समझाइए। तो अलग अलग चीज़ें होती है, किचन सेटअप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में कैसे करना है। तो हम अलग अलग सर्विसेज ऑफर करते हैं, और मतलब सम सर्विसेज आर जस्ट कैसे कहते हैं किताबी सर्विसेज होते हैं, और दूसरे होते हैं प्रैक्टिकल, मतलब आप आके एक्चुअली कुकिंग सीखोगे, डेमो और पार्टिसिपेशन की क्लास होगी। तो अलग अलग सर्विस, इसीलिए कलिनरी स्टूडियो कहा है उसे।
मेरी आँखों में तुम हो, मेरे सपनों में तुम हो,
मेरी धड़कन में तुम हो, मेरी सांसों में तुम हो।
अब ये हालात हैं, दोनों अब साथ हैं,
दिल में जज्बात है,
हम दोनों का ये प्यार है कितना प्यारा
मेरी आँखों में तुम हो मेरे सपनों में तुम हो
मेरी धड़कन में तुम हो मेरी सांसों में तुम हो
अब ये हालात हैं दोनों अब साथ हैं
दिल में जज्बात हैं हाथों में हाथ हैं
हम दोनों का ये प्यार है कितना प्यारा
मेरी आँखों में तुम हो मेरे सपनों में तुम हो अगर हो तो हंसी है जिंदगी तुम नहीं तो कुछ नहीं है जिंदगी
तुम से ही राहों में है ये दिलकशी तुम से ही पाई है मैंने हर खुशी
तुम ये जान लो तुम ये मान लो तुम हो मेरी मंजिल तुम ही मेरी धड़कन में तुम हो मेरी सांसों में तुम हो
अब ये हालात हैं दोनों अब साथ हैं
दिल में जज्बात हैं हाथों में हाथ हैं
हम दोनों का ये प्यार है कितना प्यारा
मेरी आँखों में तुम हो
मेरे सपनों में तुम हो
खुशबू हो कोई रंग हो तुमको जो देखे वो क्यों ना दंग हो
तुम जो आ गए तुम जो छा गए तुमने मुझ पर जादू है कर दिया
मेरी आँखों में तुम हो मेरे सपनों में तुम हो
मेरी धड़कन में तुम हो मेरी सांसों में तुम हो
अब ये हालात हैं दोनों अब साथ हैं
दिल में जज्बात हैं हाथों में हाथ हैं
हम दोनों का ये प्यार है कितना प्यारा
मेरी आँखों में तुम हो मेरे सपनों में तुम हो
मेरी धड़कन में तुम हो मेरी सांसों में तुम हो
अब ये हालात हैं दोनों अब साथ हैं
दिल में जज्बात हैं हाथों में हाथ हैं
हम दोनों का ये प्यार है कितना प्यारा
मेरी आँखों में तुम हो मेरे सपनों में तुम हो
अरे 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 ना 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 ना
Thank you. आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो, आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी, बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी,
कैसी ये हवा चली पानी में आग लगी जाने क्या प्यास जगी रे,
भीगा ये तेरा बदन जगाए मीठी चुभन, नशे में झूमे ये मन रे,
कहाँ हूँ मैं मुझे भी ये होश नहीं आया,
ओहो आहा ओहो, आज बहक जाए तो होश ना दिलाइयो, आज बहक जाए तो होश ना दिलाइयो, होश जो दिलाइयो तो होश जो दिलाइयो तो खुद भी बहक जाइयो, आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। हसीना डरी डरी बाहों में सिमट गई, सीने से लिपट गई रे,
तुझे तो आया मजा तुझे तो सुझी हसी, मेरी तो जान फसी रे,
जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के, आहा ओहो आहा ओहो,
बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात जो सुलझाइयो तो खुद भी उलझ जाइयो,
आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। बादल से छमछम शराबर से,
सांवरी घटा से शबाबर से,
बादल से छमछम शराबर से,
सांवरी घटा से शबाबर से,
बूंदों की बजी पायल घटा ने छेड़ी गजल, ये रात गई मचल रे,
दिलों की फिजा में रंग खुले, जवां दिल खुल के मिले रे,
होना था जो हुआ वही अब डरना क्या,
आहा
डूब जाए तो हमें ना बचाइयो, आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो,
हमें जो बचाइयो तो, हमें जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो, आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो,
आहा
ओहो
आहा
ओहो,
इसमें अभी जो आपने एक बात बोली उससे मेरे ख्याल में आया, ध्यान में आया कि बासमती राइस को कोई अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट कर लिया था कुछ 10 साल पहले और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत साल लगे टू मेक इट बिकॉज इट इज एन इंडियन प्रोडक्ट एंड इट इज अ कॉमन इंडियन प्रोडक्ट।
यू कैन नॉट, कहानी बहुत डीप है आपको पता है?
ये तो नहीं पता है लेकिन उतना सुना था आप बोले इसलिए बात ध्यान में आई।
हाँ, वहाँ पे एक ब्रांड थी टेक्समती करके,
ओके,
जो उसका बायलाइन हुआ करता था बासमती राइस। अभी हमारा मानना है कि एक्चुअली बासमती का ओरिजिनल नाम वनस्वाटी था क्योंकि कहते हैं कि भगवान विष्णु खुद कुरुक्षेत्र में आके उन्होंने पहली बीज डाली थी, बोई थी। तो ये जो चावल का दाना है ये सिर्फ दाना ही नहीं है, जिस मिट्टी में ये उगता है वो भी हम मतलब प्रोटेक्टेड ओरिजिन है। आप ये ग्रेन को लेके कहीं और उगाएंगे वो बासमती नहीं होगी क्योंकि वो जो फ्रेग्रेंस है वो माटी से आती है, तो आप माटी कैसे रेप्लिकेट करोगे ना। तो उसके बेसिस पे और कहीं भी दूसरे बेसिस थे ये मतलब लीगल मुद्दा था जिसके ऊपर हम कहते थे कि बासमती कैन ओनली बी इंडियन, इट कैन नॉट बी अमेरिकन। तो हमने एक्चुअली बहुत देर कर दी, हमको बहुत सारे हमारे ब्रीड्स हमारे
कर देना चाहिए था सारे,
बहुत नीम हल्दी, इसीलिए ये रेसिपी में आप देखो तूर दाल या हींग या जीरा अभी सारी दुनिया में उगता है। आज आप नहीं कह सकते हो कि आप उसको क्यूमिन नहीं बोल सकते हो, लेकिन अगर एक प्रकार का जीरा है, मानो अगर एक कोई पर्टिकुलर जीरा होता है जैसा बासमती प्रकार का चावल है ना, और वो किसी कारण सिर्फ हम उगाते हैं, जैसे कि हम लोग तेलीचेरी पेपर बोलते हैं ना, अभी तेलीचेरी पेपर में उसका फ्लेवर उसका उसका जो उसकी जो क्वालिटीज है इंट्रिंसिकली
जमीन से आता होगा,
जमीन से आती है और वहाँ 2 बरसातें होती है,
ओके,
और वो सेकंड बरसात की वजह से उसमें वो फ्लेवर आता है। अभी वो बरसात आप रेप्लिकेट कैसे करोगे ना किसी कंट्री में। तो ये सब चीजें होती हैं, जैसे मानसून मलाबार कॉफी है, उसे मानसून मलाबार क्यों कहते हैं, क्योंकि एक वक्त में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा लेकिन हम लोग इंडिया से कॉफी ऑलमोस्ट 400 साल पहले इम्पोर्ट करते थे नेदरलैंड्स में। तो ये जो कॉफी जाती थी हमारे कोस्ट लाइन से, मलाबार के कोस्ट लाइन से, ये शिप में जाती थी और बहुत वक्त लग जाता था। तो वो शिप में वो जो ठंडी हवा रहती थी ना उसकी वजह से वो बीन्स पीले पड़ जाते थे, और जब वो लोग कॉफी ग्राइंड करके बनाते थे तो उसको एक अद्भुत सॉर्ट ऑफ डेलिकेट स्वाद या क्या कहते हैं उसे अरोमा होता था। तो जब ये शिप का सिलसिला बंद हो गया और हम लोग शिप करने लगे उसे एयर में, तो कॉफी बदल गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी ये लोग एक्चुअली आर्टिफिशियली इसको
क्रिएट करते
हैं और इसीलिए इसको मतलब एक पेटेंट आ गया है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट एनी कॉफी, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड द कॉफी।
ये बहुत ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी आपसे जानने की,
मुझे सीखने की बहुत सारी चीजें हैं।
जान में हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जमा निसार हो गया शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो
आप यूएसए में जाके कुछ टीवी शोज भी करने लगे थे। हाँ,
पीबीएस के साथ मैंने पीबीएस एक चैनल है जो बहुत मशहूर हो गई थी डाउनटन एबी के लिए, वो जो सीरीज थी ना ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी पे जो बहुत फेमस हो गई थी, वही चैनल थी। और उनके साथ मैंने एक कुकिंग शो किया था चॉकलेट पे आधारित, क्योंकि उस वक्त मैं एक चॉकलेट क्लास सिखा रही थी बॉस्टन के 3 स्कूलों में, तो मुझे बुलाया था। और उसमें हमने काफ़ी, और उस शो में क्या होता है कि लोग, आप रेसिपी बनाते हो और आपकी बुकलेट निकलती है और वो बुकलेट के आधार पर लोग डोनेशन करते हैं, तो इट्स अ डोनेशन ड्राइव। तो हर शो जो आप करते हो पैसा इकट्ठा होता है फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, तो उसका एक गुड कॉज भी है, तो वो शो किया था। फिर अपियरेंसेज काफ़ी, मतलब चैनल्स वगैरह पे उस वक्त किया भी था, बट इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस।
तो ये बताइए कि आप ज्यादा फेमस यूएसए में हैं कि इंडिया में हैं?
मुझे पता नहीं है,
आपको तो पता होना ही
नहीं, मुझे नहीं पता है। दिल कहाँ है ये मैं बता सकती हूँ,
आई होप कि यही है।
डेफिनेटली,
वहाँ तो नहीं छोड़ा है ना।
डेफिनेटली।
गुड। हमारे साथ हैं तारा देशपांडे जी, इनकी बहुत चीजें हैं तो मैं नाम ही खाली बताता हूँ अभी। मैं हूँ विकास मेहता सेन। अभी कुछ नया वेंचर आप चालू कर रहे हैं, हमने सुना है नरीमन पॉइंट में, क्या शॉप कर रहे हैं या रेस्टोरेंट?
एक जैसे मैंने कहा एक स्टूडियो है जहाँ पे हम लोग अलग अलग फूड रिलेटेड इवेंट्स करेंगे, क्लासेस करेंगे, बुक लॉन्चेस करेंगे, हमारी रिसर्च वहाँ होगी फूड प्रोडक्ट्स की। और इस वक्त हम लोग सोच रहे हैं कि एक फूड प्रोडक्ट रिटेल फूड प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो ये सब चल रहा है।
कहाँ है नरीमन पॉइंट पे? क्यों, मेरी तो ऑफिस नरीमन पॉइंट पे ही है।
आप
हम टेस्टिंग के लिए आ सकते हैं?
जरूर, कभी भी आप
कुछ
चाहें,
भी आपका तो स्पेशल बने
एनी टाइम
हमको बुला लीजिए।
आप अपना खिड़की खुला छोड़िए, आप स्मेल आएगी।
आ जाएगा।
जरूर जरूर।
कहाँ पे है नरीमन पॉइंट?
अटलांटा बिल्डिंग, पता है आपको? वहीं पे।
हम तो 4-5 बिल्डिंग पास में है।
पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास
गल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास तुम रहती को देखा था मैंने अपने आंगन में जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं मैं सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती हो तुमसे प्यार करूं तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन मीठी प्यार ये कहती हो
ये वेब शो क्या चालू कर रहे हैं अभी आप
ये एक शो है जिसका
कितनी चीजें करेंगे ये बताइए पहले
एक खत्म हो जाता है
टेलीविजन
तो फिर नया स्टार्ट हो जाता है
वेब शो
आप भी तो करते हो
हम तो करते हैं
है कि नहीं
तो
फिर आप क्या कह रहे हो
तो हम सीखना चाह रहे हैं समझना चाह रहे हैं आपसे
मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जो क्रिएटिव माइंड होता है उसको जहाँ इंटरेस्ट डेवलप होता है वो इट्स लाइक वाटर नो इट फाइंड्स इट्स वे यू कांट स्टॉप इट इट्स ओन लेवल सो क्रिएटिविटी वैसे ही होता है लोग पूछते हैं कि पहले जब मैं किताबें लिखती थी पूछते थे कि उसमें रिलेशन क्या है फिल्मों और इसमें दोनों तो फिल्मों में भी आप कहानी तो सुनाते हो ना तो लिखता तो कोई होता है ना सेम थिंग लाइक दैट आई मीन आई थिंक इट्स द क्रिएटिव माइंड कैनॉट बी
कंटेन्ड सो हम तो ऑथर भी हैं चैम्बर भी चलाते हैं बिजनेस भी चलाते हैं रेडियो भी करते हैं और काफी चीजें मैं तो ये हमेशा सोचते रहता हूँ अब अगली चीज क्या है
आप शौकीन हो ना
हाँ, बहुत शौक
और बहुत जरूरी है यू नो फॉर टू एंजॉय लाइफ बहुत जरूरी है कि आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहे और आप जेस्ट होना चाहिए
4:30 आई वेक अप रोज 4:30 से 6 मैं अपनी बुक्स लिखता हूँ तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता है एक बार दिन चालू हो गया खत्म थिंकिंग इज गॉन अब ये फाइनली एक चीज बताइए ये घड़ी बता रही है कि हमारा टाइम पूरा हो गया लेकिन ये बताइए कि आगे क्या है आपका क्या विचार है क्या सोच रहे हैं
मुझे ट्विटर और इंस्टा और फेसबुक पे लोग पूछते रहते हैं कि आप अगली फिल्म कभी करने वाले हो, तो अभी लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि आ गए वापस और सिनेमा काफी बदल गई है। जब मैं बॉम्बे बॉयज और इस रात की सुबह नहीं वगैरह कर रही थी तो देवर हटके फिल्में, लेकिन आजकल ऐसी बहुत फिल्में बन रही हैं, कैरेक्टराइजेशंस बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, प्लॉट लाइंस बदल गए हैं, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जिसमें सॉन्ग्स ही नहीं है। उस वक्त अगर आप कोई फिल्म बनाते जिसमें सॉन्ग्स नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता था
नहीं चलेगा।
सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप आई एम लकी एंड समथिंग विल हैपन इन द नियर फ्यूचर।
इट विल, ऑल द बेस्ट टू यू।
थैंक यू सो मच।
थैंक यू। हमारे साथ थी तारा देशपांडे जी, ये प्रोमोटर ऑफ तारा देशपांडे कलिनरी स्टूडियो, फिल्म टेलीविजन एंड स्टेज आर्टिस्ट एंड एक्ट्रेस। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ आप आए, बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू,
वी विल एंजॉय।
दोबारा जरूर बुलाइए।
बिल्कुल, थैंक यू।
कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुलो आसमान में तारा देशपांडे कलिनरी स्टूडियो की प्रमोटर, फिल्म टेलीविजन स्टेज एक्ट्रेस श्रीमती तारा देशपांडे से की गई बातचीत। इनसे बातचीत की नजारा टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन, IBG के प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मित्र सेन ने। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। निर्मिति सहायक सृष्टि जाधव और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी।